अध्याय 10 ख भारतीय इतिहास लेखन का एक सर्वेक्षण। इतिहास पुराण परंपरा, इतिहास पुराण ट्रेडिशन, इतिहास पुराण की परंपरा। भारतीय संस्कृति के सम्यक अभिज्ञान के लिए पुराणों का अध्ययन आवश्यक है। पुराण और इतिहास का अविनाभाव संबंध सर्वज्ञात है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मेरुदंड पुराण है। पुराण ही वह आधार पीठ है जिस पर आधुनिक भारतीय समाज अपने नियंत्रण को प्रतिष्ठापित करता है। यद्यपि विटर निर्ज ने लिखा है कि देयर इज नो प्रूफ हाउएवर दैट सच कलेक्शंस ऑफ इंडियंस एंड ऑफ इतिहास एंड पुराणास एक्चुअली एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स इन वैदिक टाइम्स। द इतिहास एंड पुराणास आर इतिहास पुराण सो आफ्टर मेंशन इन ओल्डर टाइम्स डू नॉट मीन्स एक्चुअल बुक्स स्टिल लेस देन एपिक्स ऑफ पुराणास विच हैव कम डाउन टू अस। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों के काव्य में इतिहास पुराण ग्रंथ विद्यमान थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है, तथा ब्राह्मणों में इतिहास पुराण बहुधा उल्लिखित है। उनसे वास्तविक पुस्तकों का अभिप्राय नहीं है, नहीं, और वर्तमान पुराणों अथवा इतिहासों का तो अभिप्राय लिया ही नहीं जा सकता। परंतु प्रश्न यह है कि जब ब्राह्मण ग्रंथ स्वयं पुस्तक रूप में है तो उनमें स्मृति इतिहास पुराण क्यों पुस्तक रूप में न थे। यह तथ्य विटर निर्ज महोदय ने उपेक्षित किया है। यह संभावना की जा सकती है क्योंकि पुराण इतिहास की भारतीय इतिहास विधा हिस्टोरियोग्राफी में एक दीर्घकालीन परंपरा रही है, जिसका संक्षिप्त विवेचन अनुवर्ती पंक्तियों में सर्वेक्षित है। पुराण शब्द की व्युत्पत्ति। पुरा भवम प्राचीन काल में होने वाला, इस अर्थ में पाणिनि सूत्र सायन चिरम प्राहवे प्रगे व्यथेस प्रगे व्यथे भ्यंस्ट युट्युलौ तुट्य च से पुरा शब्द से त्यु प्रत्यय करने पर तुट के आगमन होने पर पुरातन शब्द निष्पन्न होता है। पुराण शब्द ऋग्वेद के अनेक स्थानों पर उल्लिखित है जहाँ यह विश्लेषण है तथा इसका अर्थ है प्राचीन काल में होने वाला। यास्क के अनुसार पुराण की व्युत्पत्ति है पुरा नवम भवति, जो प्राचीन होकर भी नया होता है। वायु पुराण के अनुसार पुरा अनति अर्थात प्राचीन काल में जो जीवित था। यस्मात् पुरा हयनति दम पुराणं तेन तत् स्मृतम् निरुक्तिमस्य गौ वेद सर्व पापहि प्रमुच्यते। पद्म पुराण के अनुसार पुरा परंपरा वहित कामयते अर्थात जो प्राचीन परंपरा की कामना करता है। पृष्ठ संख्या 145। इसी प्रकार ब्राह्मण पुराण पुरा एतत् अभूत अर्थात प्राचीन काल में ऐसा हुआ। इन व्युत्पत्तियों की मीमांसा से यह निश्चित रूप से अर्थ ग्रहण होता है कि पुराण का वर्ण्य विषय प्राचीन काल से संबद्ध था। इतिहास पुराण का संबंध। पंडित भगवत तत् ने लिखा है कि इतिहास आत्मा है और पुराण उसका शरीर है। इस पुराण शरीर के बिना इतिहास का क्रम स्मरण नहीं रह सकता। पुराण इतिहास की सूची है। इतिहास को सुरक्षित रखने वाले ऐसी बहुमूल्य देन विश्व वाङ्मय में अन्यत्र नहीं है। इतिहास पुराण शब्द को कतिपय विद्वान पुराणे इतिहास शब्द का प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास के नियमानुसार यद्यपि इस शब्द को असाधु नहीं कहा जा सकता, तथापि शिष्ट परंपरागत प्रयोगों को देखने से इतिहास पुराण शब्द की प्रयोगगार्ह जान पड़ता है। समास में अविधान लक्षण कृति तद्धित समासः नियम माना जाता है। अविधान इतिहास पुराण शब्द के पक्ष में ही है। शब्दों के पूर्व निपात के विचार में श्रेष्ठ परंपरा का प्रामाण्य कहाँ तक है, यह विषय इस विषय में मित्र मिश्र का वाक्य द्रष्टव्य है। पितरौ शब्द के विग्रह में माता च पिता च होगा या पिता च माता च होगा, इस विषय को लेकर विग्रह वाक्य यद्यपि पूर्व निपात नियमोनानुशासन सिद्ध तथापि व्याख्यात संप्रदाय सिद्धो स्त्येव नहीं क्वापि पिता च माता च पितरा वृत्ति वगृहण दृष्टतई। व्यवहार प्रकाश पृष्ठ संख्या 525। समाज में तो सर्वत्र इतिहास पुराण शब्द ही दृष्ट होता है। यहाँ तक कि वाक्य में इतिहास के बाद पुराण पद का प्रयोग देखा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्टतः ज्ञात होता है कि इतिहास और पुराण का संबंध इतना घनिष्ठ है कि दोनों युगपत रीति से इतिहास पुराण नाम से अनेक स्थानों पर उल्लिखित हैं। यास्क के अनुसार ऋग्वेद में ही त्रिविध ब्रह्म के अंतर्गत इतिहास मिश्र मंत्र पाए जाते हैं। त्रितम कृपे अवहित में तत्सुक्तम प्रतिभव तत्र ब्रह्मेतिहास मिश्रमिंग मिश्रम गाथा मिश्र भवति। छांदोग्योपनिषद में सनत कुमार से ब्रह्म विद्या सीखने के अवसर पर नारद मुनि ने अपनी अधीति विद्याओं के अनुसार इतिहास पुराण को पंचम वेद बतलाया है। एक संयुक्त नाम से स्पष्ट है कि उपनिषद युग में दोनों में घनिष्ठ संबंध की भावना क्रियाशील थी। महाभारत जो स्वयं अपने को इतिहास ही नहीं परंतु प्रत्युत इतिहासोत्तम कहता है, अपने लिए पुराण नाम को भी व्यवहार करता है। वायु पुराण होने पर भी अपने को पुरातन इतिहास पृष्ठ संख्या 146 कहता है। इयम यो ब्राह्मणो विदा नितिहास पुरातनम। छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है कि इतिहास तथा पुराण दोनों ही वेद में उपलब्ध हैं। उर्वशी तथा पुरुरवा के संवाद को सूचित करने वाला उर्वशी छापसरा पुरुरवस मैंड चक में आदि शतपथ ब्राह्मण तो इतिहास है, परंतु असिद्धा इदम ग्राशीत असिद्धा इदम अग्राशीत इत्यादि विवरण पुराण है। परंतु सायण इसके विपरीत कहते हैं कि आख्यान तथा आख्यायिका का सूचक भाग इतिहास है तथा उर्वशी पुरुरवा का सृष्टि प्रक्रिया वर्णन पुराण है। आवोह व इदमग्रे सलील मेवास शतपथ ब्राह्मण इत्यादिक सृष्टि प्रतिपादक ब्राह्मण मिथिहास उर्वशी हप्सरा पुरुरवस मैंड चमके चकमे शतपथ ब्राह्मण इत्यादिनि पुरातन पुरुष वृत्तांत प्रतिपादकानि पुराणम। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने इतिहास और पुराण के प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में प्रयोगों की तुलना कर कुछ परिणाम प्रस्तुत किए हैं। एक, अथर्ववेद तथा कतिपय पुराणों में पुराण शब्द इतिहास को भी गतार्थ करता है। सर्वप्रथम केवल पुराण शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में उच्छिष्ट से शास्त्रों की सृष्टि के प्रसंग में व्यवहित है। व्रात्य के अनुगमन के अवसर पर इतिहास का पृथक स्वतंत्र रूप में प्रयोग उपलब्ध होता है। दो, इतिहास और पुराण का पृथक प्रयोग भी अनेक अनंतरकालीन वैदिक ग्रंथों तथा पुराणों में उपलब्ध होता है। तीन, कवि इतिहास पुराण को गथार्थ करता था तथा कवि इतिहास पुराण को गथार्थ करता था यथा कौटिल्य ने इतिहास के क्षेत्र में पुराण को ग्रहण किया है। पुराणम इति वृत्तम माख्यायिको उदाहरणम धर्मशास्त्र चेति इतिहास अर्थशास्त्र। चार, कभी पुराण इतिहास को गतार्थ करता था, परंतु इतिहास और पुराण में अधिकांशतः इतिहास पुराण को ही व्यक्त करता है। वैदिक युग, ऋग्वेद में पुराण शब्द का प्रयोग अनेक ऋचाओं में उपलब्ध है, परंतु इन स्थलों पर पुराण शब्द केवल प्राचीनता का बोधक है, अन्यत्र पुराणी शब्द गाथा शब्द के विश्लेषण रूप में प्रयुक्त है। इससे यह अर्थ निष्कर्षित है कि ऋग्वैदिक युग में कुछ गाथाएं ऐसी विद्यमान थी जिनका उदय किसी प्राचीन काल में हुआ था। डॉक्टर विश्वंभर शरण पाठक का मत है कि गाथा तथा नारा संशी सामान्यतया इतिहास और पुराण के साथ वर्गीकृत हैं, जो ऐतिहासिक परंपरा के साथ अपनी मान्यता को प्रकट करते हैं। अथर्ववेद में पुराण शब्द इतिहास गाथा तथा नारासंशी शब्दों के साथ प्रयुक्त है, जहाँ पृष्ठ संख्या 147 एक विशिष्ट विधा के रूप में ही उपलब्ध होता है। मेरा अनुमान है कि यह इतिहास शास्त्र हिस्टोरियोग्राफी का प्रारंभिक रूप था, जहाँ इतिहास के विभिन्न आनुषंगिक अंग उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे। अथर्ववेद में उल्लेख है, स बहृतिम बृहतिम दिश मनुव्यचलत ताम इतिहासश्च पुराणंच गाथाश्च नारा संशिश्चानु व्यचलत इतिहासस्य च स वै पुराणस्य च गाथानांच नारा संसीनम च प्रियं धाम भवति य एवं वेद। अथर्ववेद के इस उल्लेख से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि इतिहास शास्त्र के संरचना में गाथा नारा संशय एवं पुराण की जो मौखिक परंपरा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित रही वह इतिहास पुराण के रूप में कालांतर में विकसित हुई। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय का कथन है कि मेरी दृष्टि में ये चारों शब्द वैदिक साहित्य से प्रथाभूत किसी लौकिक साहित्य की सत्ता थी और स्पष्टतः संकेत करते थे हैं। मेरे विचार से वैदिक काल में दो समांतर धाराएं प्रवाहमान थी, एक वैदिक परंपरा और दूसरी लौकिक परंपरा जो आज भी वेद और लोक के नाम से भारतीय समाज जीवन में प्रचलित है। लौकिक धारा के अंतर्गत लोक में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों तथा लोक प्रसिद्ध वृत्त का वर्णन गाथा नारासंशी के माध्यम से जीवन में प्रचलित है। ऋग्वेद के दान स्तुति तथा नारासंशी से यह ज्ञात होता है कि मंत्रकर्ता ऋषि प्रभु दान देने वाले अपने किसी आश्रयदाता शासक की ऐतिहासिक वृत्त से संकलित स्तुति करता है। पुराण का संबंध इसे द्वितीय धारा से मानना नितांत उपयुक्त प्रतीत होता है। अथर्ववेद में मन्यते पुराणवित से यह ज्ञात होता है कि पुराणों के वृत्तांत का जानने वाला व्यक्ति अथर्ववेद के काल में विद्यमान था, जो अथर्ववेद कालीन इतिहासकार की भूमिका का निर्वाह करता था। इतिहास रचना का स्वरूप, डॉक्टर विश्वंभर शरण पाठक का कथन है कि इतिहास की मौलिक परंपरा उत्तर वैदिक काल में निश्चिततः पांच रूपों में प्रचलित थी। गाथा नारासंशी आख्यान इतिहास और पुराण ब्राह्मण साहित्य में भी इतिहास पुराण परंपरा प्रचलित रही। गोपथ ब्राह्मण में उल्लेख है, एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः स ब्राह्मणाः सोपनिषत्काः ऐतिहासाः सान्वाख्याताः सपुराणाः, अर्थात कला रहस्य ब्राह्मण उपनिषद इतिहास अन्वाख्यात तथा पुराण के साथ सब वेद निर्मित हुए। पृष्ठ संख्या 148। यहाँ गोपद ब्राह्मण ने इतिहास पुराण का संबंध वेद से संयुक्त किया है। दूसरे मंत्र में गोपद ब्राह्मण पांच वेदों के निर्माण का उल्लेख करता है, जिसमें इतिहास वेद तथा पुराण वेद भी सम्मिलित है। यहाँ उत्तर दिशा से इतिहास वेद का तथा ध्रुव ऊर्ध्वा से पुराण के निर्माण का वर्णन किया गया है। इस उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण युग में इतिहास वेद के समान ही मान्य शास्त्र थे तथा इतिहास और पुराण पृथक रूप में विभिन्न विधाओं के रूप में प्रचलित थे। सतपथ ब्राह्मण में इतिहास पुराण के उदय की महत्वपूर्ण गाथा सुरक्षित है, यदनुशासनानि विद्या वाक्यो वाक्य नितिहास पुराण गाथा नारासंशस्य य एवं विद्वान अनुशासनानि विद्या वाक्यो वाक्य मितिहास पुराणम गाथा नारासंशी रित्यहरत स्वाध्यायम मधीते मध्वाहुति मिखे तद्देवांस्तर्पयति। सत्वद्ब्राह्मण तथा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वागीरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अन्वाख्यानानि व्याख्यानानि वाचैव सम्राट प्रजायते। सत्वद्ब्राह्मण अर्थात विभिन्न वेदों का स्वाध्याय विभिन्न फल प्रदान करता है। अनुशासन विद्या वाको वाक्य इतिहास पुराण गाथा तथा नारायण जी के स्वाध्याय करने से देवों को मधु से पूर्ण आहुतियां प्राप्त होती हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में इतिहास पुराण समस्त पद के रूप में उल्लिखित है। विद्वान अनुशासन विद्या वाको वाक्य इतिहास पुराण गाथा नारायण जी के साथ प्रतिदिन वेद का अध्ययन करता है। वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र अनवाख्यान तथा व्याख्यान आदि आते हैं। इन उदाहरणों से दो तथ्य स्पष्ट होते हैं। प्रथम यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण काल में इतिहास पुराण की प्राचीन परंपरा प्रचलित रही तथा दूसरा तथ्य यह ज्ञात होता है कि इतिहास पुराण एक विधा अथवा एक शास्त्र के रूप में इतिहास शास्त्र का उपविहरण हो रहा था जिसमें गाथा नाराशंसी के अतिरिक्त अनुव्याख्यान व्याख्यान अनुशासन वाको वाक्य श्लोक एवं सूत्र आदि का भी समायोजन इतिहास पुराण के अंतर्गत हो रहा था। शतपथ ब्राह्मण में इतिहास पुराण के समस्त पद के रूप में उल्लेख होने से यह प्रतीत होता है कि इतिहास पुराण दोनों में विषय का सादृश्य था। आरण्यक तथा उपनिषद में इतिहास पुराण परंपरा इस काल में इतिहास पुराण की परंपरा विकसित रूप में प्राप्त होती है। तैतृय आरण्यक में उल्लेख है ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसी रीति। यहाँ पुराणानि पद का व्यवहार पुराणगत आख्यानों का अर्थ अभिष्ट है। उपनिषदों में पुराण के उदय को वेद के उदय के समान ही उल्लिखित है कि इतिहास पुराण उस महाभूत के स्वरूप है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचदेव के नाम से अभिहित किया गया है। इसी उपनिषद में पृष्ठ संख्या 149 इतिहास पुराण को पंचवेद के नाम से उल्लेख कर ब्रह्म रूप से उपासना करने की शिक्षा दी गई है। इन उदाहरणों से यह तथ्य ज्ञात है कि आरण्यक युग में पुराणों के बहुत की कल्पना प्रारंभ हो चुकी थी। संभव है यह ग्रंथ रूप में न सही आख्यान रूप में तो निश्चित ही इतिहास पुराण की परंपरा का रूपायन हो गया था। सूत्र ग्रंथ एवं इतिहास पुराण परंपरा आश्वलायन गृह सूत्र में उल्लेख है कि अवस्वाध्याय मधीयते ऋचि यंजुषी सामान्य थर्वांगिरसो ब्राह्मणान कल्पान गाथा नाराशंसी इतिहास पुराणिति अमृता दूती भी। अर्थात चारों वेद ब्राह्मण कल्प गाथा नाराशंसी इतिहास और पुराण इनका पाठ करने वाले के पितरों को अमृत की आहुतियों से तृप्ति होती है तथा इतिहास पुराणानि आततस्य कुल्याः अर्थात कल्प गाथा नाराशंसी इतिहास और पुराणों का पाठ करने वाले मनुष्य के पितरों को अमृत की लहरें प्राप्त होती हैं। अन्यत्र उल्लेख है कि आयुष्मताम कथाम कीर्तयन्तो मांगल्या नितिहास पुराणानि अर्थात चिरंजीवी मनुष्यों की कथाएं कीर्तियां और मांगलिक इतिहास पुराणों का पाठ करते हुए समय व्यतीत करने का स्पष्ट निर्देश है। इसी प्रकार आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भविष्यत पुराण का जो उल्लेख है वह यह संकेत करता है कि भविष्य में होने वाले घटनाओं का राजाओं का तथा उनके ऐतिहासिक वृत्तों का वर्णन भविष्य के पुराणों में होना चाहिए जो संभवतः भविष्य पुराण के नाम का विधान पहले ही कर लिया गया। महाकाव्यों में इतिहास पुराण परंपरा रामायण में वाल्मीकि ने पुराणों की ऐतिहासिक विश्वसनीयता के संबंध में स्पष्ट लिखा है कि एतच्छत्वा रह सुतो राजा नामिदं ब्रवीन श्रूयतां यत् पुरा वृत्तं पुराणेषु मया श्रुतम्। अर्थात सुमंत ने दशरथ से कहा कि पुराणों के ग्रंथों में जो कुछ सुन रखा है वह श्रवण कीजिए। इसी प्रकार सुमंत को पुराणों के ज्ञाता के रूप में रामायण में उल्लेख किया गया है। इससे यह संकेतित है कि राजसभाओं में इतिहास पुराण के ज्ञाता मंत्री नियुक्त किए जाते थे जो प्राचीन ऐतिहासिक परंपराओं से भिज्ञ होते थे। महाभारत में उल्लेख है क पुराणम इतिहासश्च तथा ख्यानानि यानि च महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव तत्। अर्थात पुराण इतिहास आख्यान और महात्माओं के चरित्र नित्य श्रवण करने चाहिए। ख पुराणे ही कथा दिव्या आदिवं साश्च धीयतां कश्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रुत पूर्णः पितुस्तवः। यह श्लोक पुराण के वर्ण्य का प्रतिपादक है। पुराणों में अनेक दिव्य कथाएं होती हैं। पृष्ठ संख्या 150 तथा विशिष्ट बुद्धिमान पुरुषों के आदि वंशों का वर्णन भी रहता है। यह श्लोक स्पष्टतः वंशानुचरित को तथा देव संबंधी आख्यान को पुराण का अविभाज्य अंग मानता है। ग इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुद्विन्हते। अर्थात इतिहास और पुराण द्वारा वेद के अर्थ को विस्तृत करना चाहिए। घ सांगोपनिषदांश्चैव वेदानां विस्तर इतिहास पुराणानां नामुन्मेषु निर्मित चयत। अर्थात सांगोपनिषद और वेदों का विस्तार तथा इतिहास और पुराण का प्रवर्धन श्री वेद व्यास जी की कृति है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट ज्ञात है कि महाभारत काल में पुराण ग्रंथों की रचना हो चुकी थी और पुराण इतिहास के पूर्व में मान्य थे, परंतु पुराण से पृथक इतिहास का स्वरूप निर्मित हो रहा था। कौटिल्य एवं इतिहास पुराण परंपरा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक स्थलों पर इतिहास तथा पुराण का बहुमूल्य निर्देशन किया गया है। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि सामग यजुर्वेदास्त्रयी अथर्वेद इतिहास वेदौच वेदाः। इस उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि मौर्य युग के प्रारंभिक काल में वेद के समान ही इतिहास एक विशिष्ट ग्रंथ का द्योतक था तथा वह उसी प्रकार पवित्र माना जाता था जिस प्रकार वेदत्रयी। अन्यत्र उल्लेख है पश्चिम इतिहास श्रवणे पुराण इति वृत्तम आख्यायिकोदाहरणम धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम चेतितिहासः। अर्थात कौटिल्य का निर्देश है कि दिन के पिछले भाग को राजा इतिहास के सुनने में व्यतीत करें। इतिहास क्या है? कौटिल्य ने लिखा है पुराण इतिवृत्त आख्यायिका उदाहरण धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र आदि की गणना इतिहास के अंतर्गत मानना चाहिए। कौटिल्य ने इस उल्लेख से इतिहास के क्षेत्र का विस्तार किया है। कौटिल्य के विवरण से यह ज्ञात होता है कि शासन की ओर से विभिन्न प्रकार के वेतन भोगी अधिकारियों की नियुक्ति में पौराणिक पुराणवित्ता इतिहासज्ञ सुत मागध तथा पुरोहित आदि होते थे। कौटिल्य के इस उल्लेख के अनुशीलन से ज्ञात है कि पुराणज्ञ राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था और उसका वेतन 1000 पण होता था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस युग में पुराणविद एक महत्वशाली व्यक्ति मान्य था और पुराण के प्रचार प्रसार तथा इतिहास के संकलन का कार्य भी पुराणविद ही संपादित करता था। पतंजलि महाभाष्य। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे एवं पाणिनि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य में उन्होंने लिखा है कि वाको वाक्यम इतिहासः पुराणं वैत्यकम् इति एताव शब्दस्य प्रयोग विषयः पश्पशान्हिक। अर्थात वाको वाक्य इतिहास पुराण और वैदिक आदि ये एक शब्द का प्रयोग विषय है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे जिन्होंने इतिहास एवं पुराण को एक विधा के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात शुंग काल में यह परंपरा प्रशस्त रूप से विद्यमान रही। पृष्ठ संख्या 151। धर्मशास्त्र एवं इतिहास पुराण परंपरा। धर्मशास्त्रों में इतिहास पुराण परंपरा का विशिष्ट महत्व प्रतिपादित किया गया है। क स एष बहुश्रुतो भवति लोक वेद वेदांग वित वाको वाक्य इतिहास पुराण कुशलः गौतम धर्मसूत्र। अर्थात जो वस्तु या तत्व वेद में संक्षिप्त रूपेण निर्दिष्ट है उसी का विस्तार पुराणों में प्राप्त है। यहाँ बहुश्रुत की परिभाषा में लिखा है कि बहुश्रुत वह व्यक्ति होता है जो लोक वेद वेदांग वाको वाक्य इतिहास तथा पुराण का ज्ञाता होता है। ख मीमांसते च यो वेदान षट मिरंकई सविस्तरई इतिहास पुराणानि समवेत वेद पारगह व्यास स्मृति। अर्थात वेद का पारंगत विद्वान होने के लिए छह अंगों के साथ ही इतिहास पुराणों की भी मीमांसा करने का ज्ञान आवश्यक होता है। ग स्वाध्यायम श्रावयेत पित्रै धर्मशास्त्राणि चैव हि आख्यातानितिहासांश्च पुराणानि पुराणा निखिलानि च मनुस्मृति। अर्थात श्राद्ध में यजमान नियमित ब्राह्मणों को वेद धर्मशास्त्र आख्यान इतिहास पुराण तथा खिल श्री सूक्त शिव संकल्प आदि सुनामे। घ वाक्यो वाक्यम पुराणम च नारासंसी च गाथा इतिहासांस तथा विद्या शक्त्याधीते ही योन वहम। अर्थात जो वाक्यो वाक्य पुराण नाराशंसी गाथा इतिहास और अन्यान्य विधाओं का प्रतिदिन यथाशक्ति अध्ययन करता है वह अपने पितरों को तृप्त करता है। ग मीमांसा तर्क संख्यानि वेदांतो योग एवच इतिहास पुराणानि स्मृतियों नास्ति कन्मतम। शुक्र ने अपनी नीतिसार में लिखा है कि मीमांसा तर्क सांख्य वेदांत योग स्मृति तथा इतिहास पुराण आदि 32 विधाओं के अंतर्गत गणना की गई है जिसका अध्ययन करना राजा के लिए नितांत हितकारक होता है। दार्शनिक एवं इतिहास पुराण परंपरा। प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इतिहास पुराणस्य प्रमाण यमभ्युपग्यत पुराणस्य प्रमाणयमभ्युपगभ्यते तेवा खुलयेते अथर्वापरश एतदितिहास पुराणस्य प्रमाण्यमभ्यवदन् इतिहास पुराण पंचम वेदानाम वेद इति छांदोग्य न्यायदर्शन। अर्थात प्रमाणभूत ब्राह्मण से इतिहास पुराण की प्रामाणिकता मानी गई है। वे जो सुप्रसिद्ध अथर्वांगिरस हुए हैं उन्होंने इतिहास पुराण का प्रामाण्य कथन किया है कि इतिहास पुराण वेदों में पांचवा वेद है। दो य एवं मन्म ब्राह्मणस्य दृष्टारः प्रवक्ता च ते खलु इतिहास पुराणस्य धर्मशास्त्रश्च न्यायदर्शन। अर्थात जो मंत्र ब्राह्मण के दृष्टा हैं वे ही इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र के प्रवक्ता हैं। इसी प्रकार शब्बर स्वामी जैमिनी सूत्र यज्ञ से संबद्ध देवताओं के स्वरूप का निर्णय करते समय लिखते हैं कि इस विषय में इतिहास पुराण में उपलब्ध एक मत यह था कि देवता से तात्पर्य अग्नि आदि को से है जो स्वर्ग पृष्ठ संख्या 152 में निवास किया करते हैं। कुमारिल ने तंत्र वार्तिक जैमिनी सूत्र में इतिहास पुराण की मान्यता को स्वीकारा है। शंकराचार्य ने मंत्रार्थवादे इतिहास पुराण लोकेभ्यो विग्रह वत वाद्यधिकात शंकराचार्य ने मंत्रार्थवादे इतिहास पुराण लोकेभ्यो विग्रहवत वाद्यधिकात। शंकर भाष्य अर्थात देवों के विषय में शंकराचार्य का मत है कि देवों में सामर्थ्य की भी संभावना है, क्योंकि मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण से ज्ञात है कि देवों का विग्रह होता है। दार्शनिकों के मतानुसार इतिहास पुराण के कथन प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्वीकार किए गए, जिसकी परंपरा दीर्घ काल तक भारतीय इतिहास में प्रचलित रही और अद्यकालीन मान्य है। इतिहास पुराण की परंपरा भारतीय इतिहास शास्त्र की एक सुदृढ़ एवं सर्वमान्य परंपरा है, जो ऋग्वैदिक काल से अद्यतन भारतीय लोक जीवन में प्रवाहित है। इस परंपरा में समकालीन संस्कृतियों एवं सभ्यताओं में प्रचलित सभी लोक गाथाओं, कथाओं, आख्यानों, व्याख्यानों आदि का सम्मिश्रण होते हुए इतिहास का स्वरूप निर्मित हुआ। ऐतिहासिक रचना का स्वरूप। पुराणों के ऐतिहासिक स्वरूप निर्माण हिस्टेरियोग्राफी में पुराण के अंतर्गत विवृत पांच विशिष्ट विषय थे। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणान् पंचलक्षणम्। अर्थात सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर वंशानुचरित ये पांच प्रधान विषय पुराणों में वर्णित हैं। प्रायः अधिकांश पुराणों में तथा अमरकोश में पुराणों के इन विषयों का उल्लेख किया गया है। एक, सर्ग। जगत की तथा उसकी नाना पदार्थों की उत्पत्ति अथवा सृष्टि सर्ग कही जाती है। दो, प्रतिसर्ग। सर्ग के विपरीत वस्तु अर्थात प्रलय प्रतिसर्ग कही जाती है। विष्णु पुराण में प्रतिसर्ग के लिए प्रतिसंचर और श्रीमद् भागवत में संस्था शब्द प्रयुक्त हैं। तीन, वंश। राजा ब्रह्म प्रसूता नाम वंशस्यै कलिकोन्वयः अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न राजाओं की भूत वर्तमान और भावी कुल परंपरा को वंश नाम से पुकारते हैं, परंतु अन्य पुराणों में राजवंश के अतिरिक्त ऋषियों के वंश का भी उल्लेख किया गया है। अतः पुराणों में ऋषि वंश एवं राजवंश दोनों का अर्थ समीचीन है। चार, मन्वंतर। पुराण के अनुसार सृष्टि के विभिन्न कालमान का द्योतक यह शब्द है। पौराणिक कालगणना का महत्व मन्वंतरों से व्यक्त किया गया है। भागवत पुराण में 14 मन्वंतर का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रत्येक मन्वंतर का अधिपति एक विशिष्ट मनु हुआ करता है, जिसके सहयोगी मनुदेवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अंशावतारों से युक्त साम्य को मन्वंतर कहते हैं। पांच, वंशानुचरित। वंशानुचरित देशावृत्त वंश धराश्चते श्रीमद् भागवत अर्थात पूर्वोक्त वंशों में उत्पन्न वंश परंपराओं का तथा मूल पुरुष राजाओं का विशिष्ट विवरण जिसमें वर्णित होता है वह वंशानुचरित कहा जाता है। पुराणगत वैदिक प्रक्रिया। पुराणों का उल्लेख ऋग्वैदिक संहिताओं से प्रारंभ होकर आधुनिक युग तक प्रवाहमान है, परंतु एक ऐतिहासिक प्रक्रिया ऋग्वैदिक काल से दिखाई देती है, जो पुराण संहिता के निर्माण में अनेकशः उपकरणों, उपांगों को समेट कर चलती रही। यह प्रक्रिया मौखिक एवं लिखित रूप में विकसित हुई। इस ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय अनुलिखित पंक्तियों में द्रष्टव्य है। विष्णु पुराण में स्पष्टतः उल्लेख है कि आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथा भी कल्प शुद्धि भी पुराण संहिता चक्र पुराणार्थ विशारदाः। आख्यानैश्चाप्युख्यानैर्गाथा भी कल्प शुद्ध भी पुराण संहिता चक्र पुराणार्थ विशारदाः। अर्थात पुराण के निर्माण में आख्यान, उपाख्यान, गाथा तथा कल्पशुद्धि से आधार ग्रहण कर पुराण संहिता का विकास हुआ। इन उपकरणों का रूप ध्यातव्य है। एक, गाथा। भारतीय वाङ्मय के वेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा पुराण में ऐसे अवतरण प्राप्त हैं जो किसी मान्य महीपति की स्तुति में लिखी गई रहती हैं और उसके असामान्य शौर्य अथवा दान का मात्रात्मक प्रतिपादन करती हैं। इस प्रकार की गाथाएं अति प्राचीन काल से चली आ रही हैं। पितृगीता तथै वाम गीयन्ते ब्रह्मवादि भी या गीता पितृ भी पूर्वम एलस्यानम महीपते कदा न संततावग्रय कस्य चत चत भविता सुतः ये योगी मुक्त शेषान्नात् भुवि पिंडान प्रदास्यति। वायु पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि दिव्य ऋषियों की गाथाएं पुरा काल में गाई गई थी। यस्य यज्ञेय पुरा गीता गाथा दिव्य ही महर्षि भी। अनेक गाथाएं वैदिक काल में प्रचलित थी जो लोक जीवन में गाई जाती थी। उन्हीं वैदिक गाथाओं का उपवृहण पुराणों में किया गया। यह तथ्य है कि यह गाथाएं लोक से संबंधित राजाओं के विषय में प्रख्यात थी। लोक जन की जिह्वा पर वे वर्तमान थी। उनके रचयिता का पता किसी को नहीं है। इन्हीं अज्ञात लेखकों के द्वारा प्रख्यात श्लोकों को गाथा कहा गया जो प्रारंभ में मौखिक परंपरा से श्रुति ज्ञान के रूप में विद्यमान रहे, जिनके आधार और आश्रय पर वेदव्यास ने पुराण संहिता को ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर ग्रंथ प्रणयन किया। श्रीमद् भागवत के नैम स्कंद में प्राचीन गाथाओं का अवांतर भेद से उल्लेख किया गया है और उन्हें विश्वसनीय घटना के रूप में पुराणों में प्रस्तुत किया गया है। पृष्ठ संख्या 154। आख्यान। आख्यान शास्त्र अति पुरातन है। आख्यान का अर्थ किसी पुरानी कहानी की ओर निर्देश करना है। आख्यान पूर्व वृत्तोक्ति श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण में पूर्वोक्त श्लोक के आख्यान के व्याख्यान में लिखा है। स्वयं दृष्टार्थ कथनम प्राहुराख्यानम बुधाः श्रुतस्या अर्थस्य कथनम उपाख्यानम प्रचक्षते। अर्थात स्वयं दृष्ट अर्थ का कथन आख्यान है। स्पष्टतः ऐसे अर्थ का प्रकाशन जिसका साक्षात्कार वक्ता ने स्वयं किया है अर्थात सुने गए अर्थ का कथन आख्यान शब्द का प्रयोग कात्यायन ने अपने वार्तिक में किया है। आख्यानाख्याय के इतिहास पुराणेभ्यश्च इसका उदाहरण भाष्यकार ने याव कीर्तिक तथा यायातिकः दिया है। यवकृत का आख्यान वन पर्व में दिया गया है तथा ययाति का आख्यान अनेक पुराणों तथा महाभारत में वर्णित है। सागर नंदी के नाटक लक्षण लाकोश में अथवा उसमें उद्धृत भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र के किसी पुरातन पाठ में संप्रति अनुपलब्ध आख्यान और इतिवृत्त में कोई भेद नहीं किया है। आख्यान इतिवृत्तम साद इतिहास स एव च। वायु पुराण में उल्लेख है कि आख्यानैश्चाप्युख्यान ही गाथा भी कुल कर्म भी पुराण संहिता चक्रे पुराणार्थ विशारद अर्थात पुराण विद्या में कुशल व्यास ने आख्यान उपाख्यान गथाओं और वंशों में युक्त एक पुराण संहिता का निर्माण किया। 3. उपाख्यान। विष्णु पुराण के अंतर्गत उल्लिखित उपाख्यान शब्द के अर्थ में श्रीधर स्वामी ने लिखा है। श्रुतस्यार्थस्य कथनम उपाख्यानम प्रचक्षते अर्थात श्रुत अर्थ का कथन उपाख्यान है। वक्ता के द्वारा परंपरा से सुने गए अर्थ का प्रकाशन उपाख्यान शब्द के द्वारा किया जाता है। काव्यानुशासन पर अपने विवेचन में जैनाचार्य हेमचंद्र ने लिखा है। यदाह नल सावित्री शराप्याख्यानवत प्रबंधनात अन्य प्रबोधनार्थ यदुपाख्यातम हयु उपाख्यानम अर्थात नलोपाख्यान सावित्री उपाख्यान षोडश राज्योपाख्यान आदि महाभारत में प्रसिद्ध हैं। उपाख्यानों के अनेक प्रसंग पुराणों में उपलब्ध हैं। जो परंपरा से श्रुत थे उन्हीं श्रुत उपाख्यानों को व्यास ने पुराण की रचना में समाहित किया। 1. कल्पशुद्धि। कतिपय पुराणों में कल्पशुद्धि के स्थान पर कल्पज्योक्ति या शब्द भी प्रयुक्त है। इसका अर्थ है भिन्न भिन्न कल्पों समय विशेष में उत्पन्न होने वाले विषयों का कथन या विवरण। श्रीधर स्वामी ने कल्पशुद्धि का अर्थ श्राद्ध कल्प किया है परंतु पंडित मधुसूदन ओझा और पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कल्पशुद्धि के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 155 धर्म शास्त्र का समग्र विषय मानते हैं, परंतु कल्प शुद्धि का सर्वमान्य अर्थ समय विशेष में उत्पन्न होने वाले विषयों का समायोजन कर पुराण संहिता का निर्माण करना है, क्योंकि निरुक्तकार ने पुराण की व्युत्पत्ति में लिखा है, पुराशी नवम भवति, अर्थात प्राचीन होने पर भी कालांतर में उत्पन्न परिवर्तनों को यह अपने में आत्मसात कर लेता है। 5. नाराशंसी। पुराणों के रूपायन में नाराशंसी का भी योगदान रहा है। वैदिक ग्रंथों में नाराशंसी का बहुशः उल्लेख प्राप्त होता है। राजपुरुषों के महनीय कार्यों की प्रशंसात्मक कथाएं नाराशंसी कही जाती थी। इतिहास पुराण की परंपरा में नाराशंसी का पर्याप्त योगदान है, जिसे व्यास ने वैदिक कालीन नाराशंसियों की मौखिक परंपरा को लिखित रूप में पुराण संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। 6. अन्य उपकरण। पुराण प्रणयन में वंशानुचरित कथा, प्रकृति, इतिवृत्त, पुरावंत आदि अनेक उदाहरणों से व्यास ने पुराण इतिहास का पुराण संहिता का निर्माण किया, तो इतिहास पुराण परंपरा का निर्माण करती है। 7. इतिहास का पृथकीकरण। इतिहास पुराण की परंपरा वैदिक काल से कालांतर में प्रचलित रही, परंतु निरुक्तकार ने स्पष्ट लिखा है कि वैदिक मंत्रों के अर्थों को ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत करने वाले विद्वानों का एक वर्ग था, जिन्हें इति ऐतिहासिक कहा गया है, अर्थात यास्क के युग में इतिहासकारों का एक वर्ग था जो वैदिक अर्थों की व्याख्या ऐतिहासिक दृष्टि से करता था। ऋचाओं के विशदीकरण के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की कथाओं को इतिहासम माचक्षते कहकर उद्धृत किया है। इस ऐतिहासिक संप्रदाय के अनेक मंत्रों की व्याख्या यास्क ने उनके मंतव्यानुसार स्थान स्थान पर किया है। प्राचीन काल में निश्चय रूप से होने वाली घटना इतिहास के द्वारा निर्दिष्ट की जाती थी। निरुक्त पर दुर्गाचार्य ने अपनी वृत्ति में लिखा है, निदान भूतः इतिह एवम आशित इति यह उच्यते स इतिहासः, अर्थात यह निश्चित रूप से हुआ था, यह जो कहा जाता है वह इतिहास है। इतिहास का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ प्राचीन काल में वास्तव रूप में घटित होने वाली घटना का द्योतक है। अथर्व वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में यह शब्द पुराण से भिन्न स्वतंत्र रूप में इसी अर्थ में प्रयुक्त प्रतीत होता है। यास्क ने निश्चित रूप से देवामी और शांतनु की कथा को इतिहास कहा है, तथा विश्वामित्र को सुदास पैजवन के पुरोहित होने की घटना को इतिहास कहा है। क तत्रे इतिहास माचक्षते देवा पिश्चाष्टिषेण शांतनुश्च कौख्यो भ्रातरो बभूवतु निरुक्त। ख तत्रे इतिहास माचक्षते विश्वामित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूः निरुक्त। पुराणों में आगे चलकर इतिहास शब्द का प्रयोग निःसंदेह इस इतिवृत्त अर्थ में हम पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक कथा या आख्यान को पुराण नाम से और वास्तविक घटना को इतिहास नाम से पुकारते थे। पृष्ठ संख्या 156। अत्राप्युदाहरति ममेतिहासं पुरातनम्। यही दोनों के प्राचीन अर्थों में विभेद की सीमा है। सामान्यतः महाभारत को भी इतिहास कहते हैं, क्योंकि स्वयं महाभारत अपने को जयो नामेतिहासोऽयं श्रातव्यो विजिगीषुणा कहा है। राजशेखर ने इतिहास को दो प्रकार का स्वीकारा है, एक परिक्रिया अर्थात एक नायक वाली कथा जैसे रामायण, दो पुराकल्प अर्थात बहु नायक वाली कथा जैसे महाभारत। परित्रियम पुराकल्प इतिहास गतिर्विधा स्यादेक नायका पूर्वा द्वितीय बहुनायका। परंतु इन दोनों का पार्थक्य स्पष्ट गति से प्राचीन ग्रंथों में नहीं दिया गया। महाभारत स्वयं अपने को इतिहासोत्तम बतलाता है तथा अपने लिए पुराण नाम का भी व्यवहार करता है। दूसरी ओर वायुपुराण होने पर भी अपने को पुरातन इतिहास बतलाता है। इन विरोधी कथनों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में इतिहास तथा पुराण की विभाजन रेखा बड़ी धूमिल थी, और धीरे धीरे आगे चलकर दोनों का वैशिष्ट्य निश्चित कर दिया गया। पुराण तथा इतिहास का क्षेत्र विभिन्न तथा स्वतंत्र है। छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में आचार्य शंकर ने इतिहास और पुराण दोनों का पार्थक्य स्पष्टतः दिखलाया है। इतिहास इत्युवंशी पुरु रवसोः संवादिभिः उर्वशी हाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणेव पुराणम् असद्ध इदयग्र आसिद्धित्यादि अर्थात इतिहास तथा पुराण दोनों ही वेद में उपलब्ध हैं। उर्वशी तथा पुरुरवा के संवाद को सूचित करने वाला उर्वशी हाप्सराः पुरुरवशमेंडचक में आदि शतपथ ब्राह्मण तो इतिहास है, परंतु असद्धा इदमग्रासीत इत्यादि सृष्टि प्रक्रिया धरित विवरण पुराण है। परंतु सायण इसके विपरीत कहते हैं कि प्राचीन आख्यान तथा आख्यायिका का सूचक भाग इतिहास है तथा सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन पुराण है। यह पृथकीकरण 7वीं शती में आचार्य शंकर ने किया, जब पौराणिक साहित्य व्यक्तिगत हो चुका था। जब पुराणों के विषय और लक्षण निश्चित हो गए, उस समय इतिहास पुराण से पृथक हुए। पंच लक्षणों के अतिरिक्त पुराणों में दान, तीर्थ, व्रत, अवतार तथा भुवन कोश आदि का समावेश कर लिया गया, परंतु इतिहास का क्षेत्र इससे भिन्न होकर प्राचीन आख्यानों को स्वीकार किया। इस पृथकीकरण की प्रक्रिया में इतिहास ने अपना आधार, तिथिक्रम, स्थान और घटना पर अधिक बल दिया, साथ साथ इतिहास के उद्देश्यों का भी निर्धारण किया। इतिहास प्रदीपेन मोहावरण धातिना लोकगर्भ गृहम कृत्सनम यथावत प्रकाशितम। पृष्ठ संख्या 157। अर्थात इतिहास विभिन्न विषयों की शिक्षा देकर तथा लोक व्यवहार के तथ्यों को प्रकटित कर मानव के हृदय से मोह तथा अज्ञान का निवारण करता है। पुराणों के अंतिम काल में इतिहास और पुराण की पृथकीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी, जिसका पृथक उदाहरण जय नामक इतिहास ग्रंथ है। इसे व्यास ने स्वयं पुराणों में पृथक कर महाभारत को उत्तम इतिहास के रूप में प्रथमतः स्वीकार किया, इसलिए वेदव्यास विश्व के प्रथम इतिहासकार तथा इतिहास पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में प्रसिद्ध हुए।